लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती, हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओं, हम फ्रतेल्ली तुत्ती के तीसरे अध्याय एक खुले विश्व की परिकल्पना और खोज की चर्चा कर रहे हैं। अपने पिछले प्रसारण के अंत में हमने कहा कि हम सबों को विश्वासियों के रूप में इस बात को पहचानने की जरूरत है कि हमारे जीवन में प्रेम का पहला स्थान है। प्रेम को हमें कभी जोखिम में नहीं डालना चाहिए और हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा वहाँ है जब हम प्रेम करने में असफल होते हैं। श्रोताओं, संत थॉमस अक्विनस ने ईश्वर के प्रेम को कृपा के रूप में व्याख्या करने की कोशिश की है, जहां हम अपने आप से बाहर जाते और अपने को दूसरों के संग संयुक्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरों के लिए हमारा प्रेम हमें स्वतंत्र रूप में उनकी भलाई की खोज करने को प्रेरित करता है। इसकी उत्पत्ति हम में तब होती है जब हम दूसरों को सम्मान की दृष्टि से देखते, उन्हें आदर देते और उन्हें मूल्यवान समझते हैं। यहाँ प्रेम की विषय वस्तु मुख्य रूप से आती है, जिसके फलस्वरूप जिन्हें हम प्रेम करते वे हमारे लिए प्रिय होते हैं। हम उन्हें अपने जीवन में अधिक मूल्यवान समझते हैं। प्रेम में जहाँ कोई हमारे लिए अच्छा लगता है, उसके लिए कोई भी कार्य हेतु हम स्वतः ही अपने को तैयार पाते हैं। श्रोताओं, प्रेम इस प्रकार अपने में उपकारणीय कार्यों की एक श्रृंखला है। उन कार्यों का स्रोत हमारे लिए दूसरों के साथ एकता में बने रहने की चाह है, जहां हम उन्हें मूल्यवान समझते, आदर देते और उनमें खुशी का अनुभव करते हैं, जो उनकी शारीरिक सुंदरता और नैतिक दृश्य से भिन्न होती है। दूसरों के लिए हमारा प्रेम, वे जो कुछ भी हैं, हमें उनकी बेहतरी की खोज हेतु प्रेरित करता है। दूसरों के संग केवल इस तरह के संबंध को उत्पन्न करने के द्वारा हम सामाजिक मित्रता को संभव बनाते हैं, जो किसी को हमसे पृथक नहीं करता बल्कि सबों के लिए भ्रातृत्व का द्वार खुला रखता है। प्रेम हमें पूरे विश्व से अपने को संयुक्त करने हेतु प्रेरित करता है। कोई भी व्यक्ति अपने को दूसरों से अलग रखते हुए अपनी परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेम अपने प्राकृतिक स्वभाव में व्यक्ति को अपने खुलेपन में विकास करने, दूसरों को वे जैसे भी हैं स्वीकारने हेतु प्रेरित करता है, जहां वह सारी चीजों को अपने जीवन से संयुक्त करता है। यीशु कहते हैं, तुम सभी भाई हो।
प्रेम संचार, प्रेम संचार, गाए जा, गाए जा।
श्रोताओं, यह हमें अपने कमजोरियों से परे जाने की मांग करता है, जहां हम अपने को दूसरे प्रांतों और देशों से संयुक्त करते हैं। वास्तव में हमारा दूसरों के साथ जुड़ा रहना और उनके साथ संचार माध्यमों से संयुक्त रहना आज के विश्व में शक्तिशाली रूप में हमें एकता के प्रति सचेत बनाए रखता है, साथ ही दूसरे देशों की सामान्य परिस्थिति से वाकिफ करता है। इतिहास के आयामों के मुताबिक और विभिन्न जाति समुदायों की विविधता में, समाजों और संस्कृतियों में हम एक बुलाहट के बीज को पाते हैं, जो हमें एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखने हेतु मदद करता है, जो एक दूसरे को स्वीकार करते और एक दूसरे की चिंता करते हैं। शहरों के स्थल या परिवारों के अंदर भी कुछ भाग हैं जो अपने में बंद हैं। अतः प्रेम में एक वैश्विक खुलापन है जो भौगोलिक की बजाय अस्तित्वगत है। यह हम में निर्भर करता है कि हम रोज दिन अपनी ओर से मित्र मंडली का विस्तार करने हेतु कितना कोशिश करते हैं, उन तक पहुंचने में जिन्होंने अपने को हमसे दूर कर लिया है, जिन्हें मैं स्वतः ही अपने जीवन का अंग नहीं समझता हूं। हमारे समाज के दायरे में प्रत्येक भाई बहन जो जरूरत की स्थिति में है, जब उसका परित्याग किया जाता या उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो वह अस्तित्वगत परदेशी बन जाता है, यद्यपि उसका जन्म हमारे ही देश में क्यों ना हुआ हो। वे अपने सभी अधिकारों के साथ देश के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन उनके संग अपने ही देश में परदेशियों सा व्यवहार किया जाता है। रंग भेद एक वायरस के समान है जो अति शीघ्रता से फैलता, खत्म होने के बदले छिपता और प्रतीक्षा में दुबक जाता है। संत पापा कहते हैं कि मैं कुछ एक उन गुप्त निर्वासनों का जिक्र करना चाहूंगा जो समाज में परदेशियों के रूप में देखे जाते हैं। बहुत से लोग जो शारीरिक रूप में अयोग्य हैं, अपने में इस बात का अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है और वे बिना सहभागिता के होते हैं। बहुत सारी चीजें अब भी उन्हें पूरी तरह से ऊर्जावान होने से रोकती हैं। हम केवल उनकी चिंता ना करें, वरन हम इस बात को सुनिश्चित करें कि वे किस तरह सामाजिक और कलिसियाई समुदाय में सक्रिय रूप से सहभागी हो सकते हैं। यह हमारे समय की मांग और अपने में एक उबाव प्रतिक्रिया है, यद्यपि यह धीरे धीरे हमारी अंतरात्मा को प्रशिक्षित करती और हमें दूसरों के अनूठेपन, अद्वितीयता को स्वीकार करने के योग्य बनाती है। संत पापा कहते हैं कि मैं उन बुजुर्गों के बारे में भी सोचता हूँ जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें भार जैसा समझा जाता है। वे अपने जीवन के अनुभवों द्वारा समाज के लिए एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसके फलस्वरूप जन सामान्य की भलाई होती है। वे इस संदर्भ में दोहराते हुए कहते हैं कि हमारे लिए यह जरूरी है कि हम उन लोगों के लिए साहसपूर्वक एक आवाज बने जो अपनी शारीरिक अयोग्यता के कारण भेदभाव का शिकार हुए हैं, क्योंकि यह दुख की बात है कि कुछ देशों में आज भी हम यह पाते हैं कि ऐसे लोगों को बराबरी का मानवीय सम्मान नहीं दिया जाता है। श्रोताओ, प्रेम जो हर शहर और देश की सीमाओं से परे जाने की क्षमता रखता है, उसे हम सामाजिक मित्रता की संज्ञा दे सकते हैं। समाज में सच्ची सामाजिक मित्रता हमें अपने को सच्चे रूप में पूरे विश्व के लिए खुला रहने के योग्य बनाती है। हम कुछ लोगों में एक झूठी वैश्विकतावाद को पाते हैं जो विदेशों का दौरा करते क्योंकि वे अपने ही लोगों को सहन करने या उन्हें प्रेम करने में असक्षम हैं। वे जो अपने लोगों को हीन भावना से देखते हैं, वे समाज को प्रथम दर्जे और द्वितीय दर्जे में बांट देते हैं, जहां लोगों को अधिक और कम सम्मान दिया जाता है, जहां कुछ लोग अपने में अधिक से अधिक अधिकारों का लाभ उठाते, वहीं कुछ को कम से ही संतुष्ट रहना होता है। इस भांति वे इस बात से अपने को वंचित पाते हैं कि सबों के लिए समाज में बराबर की हिस्सेदारी है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
शुभ संदेश सुनाएंगे,
सुनाएंगे।
प्रभु का प्यार फैलाएंगे,
फैलाएंगे।
उसी की ज्योति जलाएंगे,
जलाएंगे।
अंधकार दूर भगाएंगे,
भगाएंगे। वो कैसे?
वो है प्रेम संचार। सुर संगीत सिखाएंगे, ढोलक तबला बजाएंगे,
त्रिकिटा
भारतीय नृत्य करेंगे, नुक्कड़ नाटक
रचाएंगे। वो कैसे?
वो है प्रेम संचार। अशिक्षा को मिटाएंगे,
मिटाएंगे।
भ्रष्टाचार हटाएंगे,
हटाएंगे।
लोगों को हक दिलाएंगे,
दिलाएंगे।
गरीबी को निकालेंगे,
निकालेंगे। वो कैसे?
वो है प्रेम संचार।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 2 फरवरी यीशु के मंदिर में समर्पण महापर्व और समर्पित जीवन के लिए 25वें विश्व दिवस के उपलक्ष्य में संत पापा फ्रांसिस रोम समय अनुसार 5:30 बजे समारोह क्रिस्त त्याग अर्पित करेंगे। जब हम विश्व समर्पित जीवन दिवस मना रहे हैं, हम ईश्वर को उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बुलाहट्य जीवन को अपनाया है। उक्त बात पोलैंड के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन के समर्पित जीवन और प्रेरितिक जीवन के अध्यक्ष मोनसिन्योर जेके किचिन्स्की ने लिखी। विश्व समर्पित जीवन दिवस पर धर्मदक्षों के वेबसाइट में प्रकाशित संदेश में धर्मदक्ष किचिन्स्की ने याद किया है कि यह पर्व मोमबत्ती मिसा के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। हमारे जीवन का स्रोत एवं पराकाष्ठा यूखरिस्त है, पौत्र भोज जो हमें ईश्वर के साथ संयुक्त होने में मदद देता है। यूखरिस्त से मिलने वाली शक्ति के द्वारा ही हम प्रत्येक जन ऊपर उठ सकते और ईश्वर के प्रकाश की परिधि में निरंतर रह सकते हैं। समर्पित जीवन के धर्म संघ एवं प्रेरितिक जीवन के सोसाइटी के लिए बने आयोग के अध्यक्ष ने लिखा, ईश्वर ने हम में से कुछ लोगों को ऐसी जीवन यात्रा के लिए चुना है ताकि हम सुसमाचारी सलाहों के अनुसार जी सकें, जो प्रत्येक व्यक्ति के भावी जीवन का एक चिन्ह है। जब हम समर्पित जीवन के लिए विश्व दिवस मना रहे हैं, हम उन सभी लोगों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने इस बुलाहट को अपनाया है। यूखरिस्त के मंदिर में आकर हम विश्वास, आशा और प्रेम के एक समुदाय का निर्माण करते हैं। विश्वास जो ईश्वचन को सुनने के द्वारा उत्पन्न होता है, केवल इसी से हमारा समुदाय परिपक्व हो सकता है। समुदाय इसके विकास एवं तरक्की का स्थान है। समुदाय में ही लोगों के बीच व्यक्ति प्रेम को महसूस कर सकता है एवं सच्चा प्रेम करना भी सीख सकता है। समुदाय हमारा बल है जब हम दुर्बल हो जाते हैं, हमारा सहारा है जब हम गिरते हैं। जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ने में आशा खो देते हैं, तो यह हमें आगे बढ़ने में मदद देता है। मोनसिन्योर किचिन्स्की ने जोर दिया है कि समर्पित व्यक्ति सामुदायिक जीवन के महत्व का चिन्ह है। अपने धर्म सामाजिक समुदाय में, संस्था में, कलीसियाई समुदाय में अथवा जहां वह कार्य करता है, हमें ईश्वर की स्पष्ट उपस्थिति की याद दिलाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां वैवाहिक जीवन, परिवार और सामाजिक संबंध कमजोर हो रहे हैं, प्रार्थना और काम में उनकी निष्ठा का एक खास अर्थ है। आज जब बहुत सारे लोग विश्वास के गहरे संकट का अनुभव कर रहे हैं, कुछ लोग कलीसिया समुदाय को त्याग रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में धर्म सामाजिक समुदाय को दुनिया के घोर अंधेरे को दूर करने हेतु प्रकाश के स्रोत के समान बनना है। धर्माध्यक्ष ने कहा कि इन दिनों जो महामारी के संकट से प्रभावित है, हम में से कई के लिए विश्वास की परीक्षा बन गई है, साथ ही आपसी जिम्मेदारी की परख भी। ऐसी परिस्थिति में भी समर्पित लोगों की कमी नहीं हुई है, जो तुरंत जरूरतमंद, बीमार, पीड़ित, एकाकी, गरीब और परित्यक्त लोगों की मदद हेतु आगे आए हैं। धर्माध्यक्ष ने अंत में लिखा कि हम सभी समर्पित लोगों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में अलग तरीके से हमारा साथ देते हैं। हम जानते हैं कि वे कलीसिया और दुनिया के लिए अनगिनत कार्य करते हैं। उन्होंने कामना की कि भले प्रभु उनके समर्पण को नवीकृत करे एवं उनके दैनिक प्रयासों पर आशीष प्रदान करे। इस बीच संत पापा फ्रांसिस ने आदिवासी लोगों के मंच की पांचवी सभा के आयोजकों एवं प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा है। सभा को प्रेषित संदेश में संत पापा ने उनके प्रति कलीसिया के सामीप्य एवं एक साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ एक रूपता नहीं है जो विविधता से इनकार करता एवं एक नए तरह के उपनिवेशवाद को थोपता है। हम जानते हैं कि जब विविधताओं को आपसी समझदारी के साथ व्यक्त एवं समृद्ध किया जाता है, लोगों के बीच एकता बढ़ती एवं संबंध सजीव होते हैं। वास्तव में यह एक ऐसे विकास को बढ़ावा देने का सवाल है जिसका उपभोग साधन के रूप में और अंत के रूप में नहीं, बल्कि उस पर्यावरण के रूप में करना है जो नजर डालता, सुनता, सीखता और आनंदित होता है। यही समग्र पारिस्थितिकी है जिसमें ग्रह की रक्षा के साथ सामाजिक न्याय जुड़ा है। इसी विनम्र भाव के साथ हम भुखमरी से पूरी जीत तथा स्थायी मूल्य पर आधारित समाज को देख पाएंगे। संत पापा ने संदेश में सभा के प्रतिभागियों के लिए कामना की कि इन दिनों उनके कार्य विश्व के प्रति प्रेम का प्रचुर फल लाए, जिसका निर्माण हम सभी करना चाहते हैं एवं जिसके खजाने को हम आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहते हैं, न कि कचरे का ढेर। संत पापा ने कहा कि हम सभी लोगों के हित पर ध्यान दें। उन्होंने आदिवासी समुदाय एवं उन लोगों की मदद करने वालों पर ईश्वर की आशीष की याचना की जो ग्रह के सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं, किंतु प्रभु के हाथों से रची सृष्टि के साथ जीते और उसका सम्मान करते हैं। मानव बंधुत्व के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के पूर्व अंतर धार्मिक वार्ता हेतु गठित परम धम पीठ समिति के अध्यक्ष ने जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं पर गौर किया है एवं उम्मीद जताई है कि मानव भ्रातृत्व पर 2021 जावेद पुरस्कार मानवता की सेवा में विभिन्न आस्था के लोगों के लिए सहयोग का एक फलप्रद चिन्ह प्रकट करेगा। 4 फरवरी को मानव बंधुत्व पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। पहल को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है और अबू धाबी में संत पापा फ्रांसिस एवं अलहजर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तायब द्वारा मानव बंधुत्व के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के 2 साल बाद जारी की गई है। अंतर धार्मिक वार्ता हेतु गठित परम धम पीठ समिति के अध्यक्ष कार्डिनल मिगवेल एंजेल आयुसो गिक्सोत के अनुसार यह अवसर शांति की संस्कृति के लिए काम करने की चाह उत्पन्न करेगा, क्योंकि जब कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट समाप्त हो जाएगा तब हम भाईचारा एवं एकात्मकता हेतु पुनर्निर्माण करने तथा दूसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए बुलाए जाएंगे। कार्डिनल के लिए विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती में दिए गए मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि दस्तावेज हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों जिम्मेदारियों, नए रुझानों और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर जरूरतों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पिछले साल 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की 75वीं सत्र में 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।